स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। चीन दौरा समाप्त कर मोदी पहुंचे मंगोलिया, लेकिन चीन दौरे से कुछ हासिल हुआ भी या नहीं?
इस विजिट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि चीन और भारत के बीच में एक नया दौर के संबंध आगे बढ़ने के आसार दिखाई दिए।
आज मंगोलिया की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीनी व्यापारियों को चाइनीज खाना बेचने में क्यों आ रही है मुश्किलें?
बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, सरकारी तंत्र से निपटना आसान नहीं।
सुनिएगा ये खास रिपोर्ट, होगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की चीन यात्रा के बाद कल मंगोलिया पहुंच गए। आज वो राजधानी उलन बाटोर में मंगोलिया की संसद को संबोधित करेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला मंगोलियाई दौरा है। भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी, जिसमें परिवहन, राजमार्गों के विकास और ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भी शामिल है। अमरीकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा है कि सीरिया में विशेष अमरीकी बलों की कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ नेता की मौत जिहादियों के लिए एक बड़ा धक्का है। अबू सयाफ अमरीकी कमांडो कार्रवाई में मारे गए। माना जाता है कि वो पूर्वी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के तेल के कारोबार को संभालते थे। ये पहला मौका है जब अमरीकी बलों ने आईएस के खिलाफ सीरिया में जमीनी कार्रवाई की है। बीबीसी को अफ्रीकी देश बुरुंडी में ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि राष्ट्रपति पियरे एनकुरुनजीजा के तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद पुलिस ने विरोधी पक्ष के लोगों को निशाना बनाया है। राजधानी बुजुम्बुरा में एक अस्पताल में कार्यरत सर्जन ने बताया कि राष्ट्रपति के वफादार पुलिस के जवान शुक्रवार को आए और उन्होंने वहां इलाज करा रहे बागी सैनिकों और आम लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी।
He was here, emergency room. We see a group of policemen arrive here.
हमारे पास 3 मरीज आए, वो इमरजेंसी रूप में थे। तभी पुलिसकर्मियों का एक दल आया और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और वो उन मरीजों को तलाश रहे थे। ये थे एक डॉक्टर एंटोनियो के शब्द। घटना स्थल पर पहुंचे बीबीसी संवाददाता को वहां गोलियों के खोखे, खिड़कियों के टूटे शीशे और फर्श पर बिखरा खून भी मिला। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में कम से कम 4 चरमपंथी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अमरीकी विमान से शावल क्षेत्र में चरमपंथियों के ठिकाने पर मिसाइल दागी गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आइस हॉकी के एक दोस्ताना मैच में 8 गोल दागे, हालांकि इसमें उन्हें 2 पूर्व राष्ट्रीय चैंपियनों की मदद भी मिली। ये मैच दूसरे विश्व युद्ध में मिली जीत की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहे समारोह के तहत सोची में खेला गया। हालांकि सोशल मीडिया पर मैच में पुतिन के प्रदर्शन पर काफी चुटकियां भी ली जा रही हैं। और उत्तरी नाइजीरिया में बस स्टैंड पर एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। ये हमला योबे राज्य की राजधानी दामातारू में हुआ और इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
तारीख 17 मई दिन रविवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिनों की चीन यात्रा पूरी करके मंगोलिया पहुंच गए हैं। इन 3 दिनों में मोदी के चीन दौरे की खूब चर्चा हुई। चीन के साथ हुए समझौते तो चीनी उद्योगपतियों के साथ बैठक में मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर भी जोर दिया। कुछ विवादित मुद्दों पर ठोस प्रगति न होने की टीस भी मोदी के बयान में दिखी। मोदी की चीन यात्रा पर सुनिए संदीप सोनी की रिपोर्ट।
$22 अरब के व्यापारिक समझौते और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर जोर। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने एक ओर जहां मेक इन इंडिया पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर चीन के आविष्कारों में भारतीय ज्ञान की भूमिका का गुणगान किया।
इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नॉलेज सोसाइटी। वेवर एवर यू हैव बीन एन इनोवेटिंग सोसाइटी एंशिएंट चाइना वाज हाईली एडवांस्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
भारत हमेशा से ज्ञान आधारित समाज रहा है। पुरातन चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अति उन्नत था। भारत की शून्य की अवधारणा और नवग्रह होने का विश्वास चीन में आविष्कारों में मददगार रहा है। हम में बहुत सी समानताएं हैं और हम मिलकर काफी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।
मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन आर्थिक मोर्चों के अलावा अन्य मोर्चों पर भी हाथ मिला लें तो दुनिया को अनेक संकटों से मुक्त करा सकते हैं। फुदान विश्वविद्यालय में गांधीवाद दर्शन केंद्र का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा,
चीन और भारत दुनिया की एक तिहाई जनसंख्या है। एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ हम दोनों, वक्त बदल चुका है और इसलिए चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं।
क्या भारत और चीन अपने सारे विवादों और मतभेदों को भुला चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीन मामलों की जानकार प्रोफेसर अलका आचार्य कहती हैं,
बड़ा मुद्दा है वो है विवादित सीमा। इस बात को लेकर दोनों तरफ से एक राष्ट्रवाद की भावना उठती है कि हमारी मातृभूमि है उस पर इनकी बुरी नजर है। दूसरा पाकिस्तान को लेकर, चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान को हथियार देकर पूरा जो साउथ एशिया में जो एक सामरिक संतुलन था उसकी का पूरा स्वरूप जिस तरह से उन्होंने बदल दिया वो, और फिर जो पाकिस्तान के साथ उनके अभी भी जो ताल्लुकात चल रहे हैं और वो उससे काफी शुभ, और खासकर कश्मीर को लेकर क्योंकि चीन पाकिस्तान के पक्ष में है, ये सब बातें जो है ना जियोपॉलिटिक्स सामरिक ये फिर अपना ही एक मोमेंटम पैदा कर देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बाद मंगोलिया जा पहुंचे हैं जहां से वे दक्षिण कोरिया भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इतनी विदेश यात्राओं से भारत को क्या हासिल हुआ, इस सवाल पर विश्लेषकों की नजर जरूर होगी।
नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा क्या भारत की विदेश नीति में किसी तरह के बदलाव की ओर संकेत करती है? क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए संदीप सोनी ने बात की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA के फेलो, चीन मामलों के जानकार डॉक्टर पुष्प अधिकारी से, और यही पूछा कि इस यात्रा से भारत को आखिर हासिल क्या हुआ।
इस विजिट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि चीन और भारत के बीच में एक नया दौर के संबंध आगे बढ़ने के आसार दिखाई दिए। अब हॉस्पिटैलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की चाइना विजिट के समकक्ष का मानता हूँ। इस विजिट में दो देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं। बायलैटरल लेवल में भी जिन जिन मुद्दों पर बातें हुई, यूं कहा जा सकता है कि बीज बोया गया है, नया बीज, अब उसको खाद और पानी देकर कैसे बड़ा करेंगे ये लार्जली इंडिया पर डिपेंड करेगा, क्योंकि चीन स्ट्रैटेजिक लेवल पर जहां 1962 में था वहां से थोड़ा भी हिला हुआ नहीं दिखाई दिया।
नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान भारत की विदेश नीति में किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का पॉलिसी शिफ्ट होता नजर आया है आपको?
फुदान यूनिवर्सिटी में गांधीयन सेंटर के उद्घाटन के दौरान भारत चीन मिलकर दुनिया को आगे बढ़ाने की जो बात मोदी जी ने बताई, यह भारत का पॉलिसी शिफ्ट की तरह इशारा करता है, क्योंकि पहले वाले सरकार को तो चाइना को सार्क में लाने तक की बात से एतराज थी। इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स संबंध को आगे बढ़ाने की पेशकश विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने चीन विजिट के दौरान की थी, उस तरह का रिजल्ट मोदी के विजिट में देखने को नहीं मिला।
अच्छा, मोदी की चीन यात्रा से दोनों देशों के लोग एक दूसरे को पहले जिस नजरिए से देखते आए हैं उस नजरिए में किसी तरह का बदलाव आया होगा?
भारत में लोग चीन को आज भी उसी नजरिए से देखते हैं जो 1962 के वार के बाद देखते थे, और चीनी भी भारतीयों के साथ उतना पॉजिटिव नहीं है। चीन से पहले मोदी जी ने अमेरिका और जापान के दौरे में जितने समझौते किए उसका रिफ्लेक्शन चाइना में पड़ा है। देखिए, अब भारत को चाहिए था कि दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक लेवल पर आउटस्टैंडिंग इश्यूज जैसे कि वीजा इश्यूज हुए, बॉर्डर प्रॉब्लम के इश्यूज हुए, साउथ और ईस्ट चाइना सी में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का स्टेक की बात जो है, और साउथ एशिया में जिस तरह से भारत में कहते हैं कि चीन अपना जो है प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है, उस तरह के इश्यूज में बातें नहीं हुई। हुई भी हो तो भी जिस तरह के आउटकम के एक्सपेक्टेशन भारत में लोग कर रहे थे उतना हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड अब चाइना सेंट्रिक होता जा रहा है, जहां भारत को अपना स्पेस सुरक्षित करना है। आने वाले दिनों में भारत के दूसरे पार्टनर्स जैसे जापान, अमेरिका किस तरह भारत और चीन के संबंध के ऊपर प्रेशर डालेंगे और भारत उसको कैसे एड्रेस करेगा, ये देखना बाकी है। और मोदी जी के इस विजिट से भारत को क्या मिला तभी पता चलेगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बाद मंगोलिया पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जब कभी चर्चा होती है उसमें मंगोलिया का नाम शायद ही आता है, लेकिन अब भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार मंगोलिया पहुंचा है। वैसे मंगोलिया की बात करें तो उसकी चर्चा इतिहास के पृष्ठों में ही नजर आती है। मंगोलिया के बारे में और जानकारी सुनिए अशोक कुमार से।
मंगोलिया से भारत के रिश्ते यूं तो लगभग 2500 साल पुराने हैं, लेकिन मंगोलिया का नाम लेते ही बहुत से लोगों के जहन में चंगेज खां का नाम आज भी सबसे पहले उभरता है। भारत और भारतीयों के लिए वो एक हमलावर थे, लेकिन मंगोलिया के लिए एक महान शासक जिसने 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की नींव डाली। इस साम्राज्य में मौजूदा चीन से लेकर मध्य एशिया, ईरान, इराक, तुर्की और यूरोप में पोलैंड की सीमा तक का इलाका समाया था, तो दिल्ली तक भी मंगोल दस्तक दे चुके थे। लेकिन ये बातें 800 साल पुरानी हैं। दुनिया अब बहुत बदल गई है। जानकार मानते हैं कि मंगोलिया अब एक ऐसा देश है जो रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच सैंडविच बना हुआ है। क्षेत्रफल के नजरिए से ये भारत का लगभग आधा है, लेकिन उसकी जनसंख्या सिर्फ 28 लाख के आसपास है। वैश्विक कूटनीति में भी मंगोलिया और उसकी राजधानी उलन बाटोर का जिक्र शायद ही कभी कभार सुनने को मिलता है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के मामले में ये देश बहुत संपन्न है। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध कायम किए और वो सोवियत संघ के बाहर ऐसा पहला देश था जिसने मंगोलिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
दुनिया भर की तरह मंगोलिया में भी हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। महाभारत जैसे धारावाहिक को मंगोलियाई भाषा में डब करके वहां टीवी पर प्रसारित भी किया जा चुका है। हालांकि मंगोलिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम है। 28 लाख की आबादी में लगभग 200 भारतीय होंगे। भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोर पहुंचा है। इससे पहले 2011 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोर का दौरा किया था। वैसे कुछ बातें उलन बाटोर को अन्य शहरों से अलग बनाती हैं। ये दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी है। सर्दियों में वहाँ आइसक्रीम कागज के बॉक्स में रखकर बेची जाती है ताकि खाने लायक बनी रहे। दरअसल जनवरी के महीने में वहाँ तापमान -36 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दुनिया का सबसे छोटा शेयर बाजार उलन बाटोर में है, तो दुनिया में घोड़े की सबसे बड़ी प्रतिमा भी इसी शहर में है जिस पर बैठे हैं चंगेज खान। कुल मिलाकर इस प्रतिमा की ऊंचाई है 131 फुट।
तो मंगोलिया के बारे में जानकारी दे रहे थे अशोक कुमार, और अब चीन से जुड़ी विशेष रिपोर्टों की श्रृंखला की बात करते हैं। दुनिया भारत को मुगलई खाने और समोसों के लिए जानती है, पर भारत में चीनी व्यंजन भी काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। भारत में इन पकवानों को अलग भारतीय अंदाज में बनाया जाता है। खास बात ये कि इस भारतीय चाइनीज खाने की तमाम छोटे बड़े रेस्तरां चेन भारतीय बिजनेसमैन चलाते हैं। अपने ही खाने को भारत में परोसने में चीनी व्यापारी कैसे पीछे रह गए? दिव्या आर्य की विशेष रिपोर्ट।
मुंबई के रेस्टोरेंट लिंग्स पेविलियन के मालिक हैं 68 साल के बाबा लिंग। चीनी पिता और भारतीय माँ के बेटे लिंग चीनी रेस्टोरेंट का खानदानी बिजनेस चलाते हैं। भारत आने के बाद लिंग के पिता ने अपना पहला चीनी रेस्टोरेंट 1945 में मुंबई में खोला, पर लिंग के मुताबिक अब ये आसान नहीं।
बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, सरकारी तंत्र से निपटना आसान नहीं, इसीलिए चीनी इस व्यापार में नहीं आते और लागत भी बहुत ज्यादा है।
पिछले 70 साल में लिंग का परिवार 4 और रेस्टोरेंट ही खोल पाया है, 3 दिल्ली और 1 अहमदाबाद में। दरअसल चाइनीज खाने के व्यापार में भारतीय बिजनेसमैन का दबदबा है, जैसे यो चाइना। साल 2003 में 6 भारतीयों ने मिलकर दिल्ली में इसका पहला रेस्टोरेंट खोला। अब 22 शहरों में 60 रेस्टोरेंट और डिलीवरी काउंटर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी चाइनीज फूड चेन बन गई है।
इंडियन बिजनेसमैन को इंडियन मार्केट को समझने में आसानी होती है, किस तरह के ब्रांड प्रेफरेंसेस हैं, किस तरह के टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर्स के, उसको समझने में आसानी होती है।
मोहन अग्रवाल यो चाइना चेन के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
इसके अलावा किस तरह की डिशेज चाहिए, किस तरह की मार्केट कैंपेन चाहिए, क्या क्या टेरिटोरियल डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से क्या क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए।
भारतीय अंदाज में बना चाइनीज खाना इतना लोकप्रिय है कि सड़क किनारे खड़ी वैन्स में समोसे और सैंडविच पर चाउमीन और फ्राइड राइस भारी पड़ते हैं। चीनी लोग चाहे इसे अपने खाने की तरह ना पहचाने, लेकिन भारत में हर गली नुक्कड़ पर मिलता है वेजिटेबल चाउमीन, यानी नूडल्स को पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर के साथ पकाया जाए तो वो बन जाता है भारत का फेवरेट चाइनीज स्नैक। तो ऐसा क्यों कि चीनी व्यापारियों को अपना ही खाना भारत में बेचने में दिक्कत आ रही है? वरिष्ठ पत्रकार और दुनिया भर के व्यंजनों की समझ रखने वाले वीर सांघवी कहते हैं,
रेस्टोरेंट सीन इन चाइना इज ऑफ रिलेटिवली रीसेंट ओरिजिन।
चीन में रेस्टोरेंट व्यापार ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। चेयरमैन माओ के समय में खानसामों को उनके गांव भेज दिया गया, इसीलिए चीन से अब भी खाने का एक्सपोर्ट शुरू होने में वक्त लगेगा। और दूसरी वजह है कि हर देश ने चाइनीज खाने को अपने अंदाज में ढाल लिया।
तो फिलहाल भारत में लगभग सारा चाइनीज खाना है मेड इन इंडिया। व्यापार करने के लिए बेहतर माहौल बने तो चाइनीज व्यापारी शायद इस रेस में दाखिल हों, पर जीत वो शायद चीनी खाने में भारतीय तड़का लगाने से ही मिले। दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
मंगोलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां की संसद को संबोधित करने वाले हैं। वो मंगोलिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आएगा। IPL में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में शाम 4 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम होगी, जबकि रात 8 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अफ्रीकी देश बुरुंडी में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो यमन में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हुए 5 दिन के संघर्ष विराम का आज आखिरी दिन है। यमन में हूती बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की 6 हफ्तों की कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। सऊदी अरब में यमन की निर्वासित सरकार ने अपने देश में जारी संकट के समाधान के लिए 3 दिन का सम्मेलन शुरू किया है, हालांकि हूती बागियों ने इसका बहिष्कार किया है।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अशोक, बताइए।
जी पंकज जी, हर तरफ मोदी जी और उनकी विदेश यात्रा की खबरें छाई हुई हैं। किसी ने
कितनी यात्रा हो चुकी है याद है?
हाँ,
16 हो चुकी है।
ये गणना भी अखबारों में चल रही है और इसी बात को लेकर विपक्ष ने निशाना बनाया नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष के इन आरोपों का जवाब दिया विदेशी धरती पर। तो कुछ अखबारों ने इसी जवाब को सुर्खी बनाया है, तो कहीं उनकी चीन यात्रा में हुए समझौतों का भी अखबारों ने जिक्र किया है। मसलन दैनिक भास्कर लिखता है, 2 दिन में 2 लाख करोड़ रुपए के करार, मोदी बोले दुख भरे दिन बीते रे भैया। वहीं जनसत्ता की हेडलाइन है, एशिया की 2 ताकतें बदलेंगी दुनिया को, मोदी ने कहा भारत और चीन के विकास से पूरे विश्व को होगा फायदा। वहीं दैनिक जागरण ने विदेश यात्राओं को लेकर विपक्षी आलोचना का जो जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसे अपनी पहली खबर के तौर पर पेश किया और सुर्खी लगाई है, चीन से विपक्ष पर निशाना, मोदी ने कहा लगातार काम करने पर भी मेरी हो रही है आलोचना।
पिछली बार भी इनकी शिकायत हुई थी कि विदेश में जाकर वो भारत की बात करते हैं।
जी जी हाँ, तो अभी
विपक्ष को जवाब देते हैं वहां।
हाँ, और उनके इस बयान पर भी विपक्ष की तरफ से जो विरोध हो रहा है। यहीं पर मौजू है एक कार्टून जनसत्ता में जो देखिए अब किससे जुड़ता है आप, जो तेल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर है, जिस कार्टून में एक आम आदमी कह रहा है नजर लग गई नसीब को। अब नसीब किसका है आप समझ गए होंगे। जनसत्ता के पहले पन्ने पर ही खबर है कि बिहार में 7.5 तीव्रता के झटकों ने दहलाया। अखबार लिखता है कि शाम 5 बजे के आसपास राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, मधुबनी, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, लखीसराय और मुंगेर जैसे जिलों में झटके महसूस किए गए हैं।
मेरी अक्सर अशोक बात होती रहती है लोगों से और काफी डरे हुए हैं लोग, डरे भी झटका तो एक साइकोलॉजिकल असर भी है,
बार बार झटके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर डराएंगे। और इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जो टकराव हो रहा है उसकी खबरें दिल्ली से छपने वाले अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर तकरार बढ़ी, केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। इस पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, नजीब केजरी की जंग राष्ट्रपति भवन पहुंची।
सिंधिया साहब ने तो बात कुछ ज्यादा ही कही, उनके खिलाफ तख्तापलट हो रही है।
लोकतंत्र में यह होता नहीं वैसे ऐसे। जनसत्ता और नवभारत टाइम्स में खबर है जिस पर नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन लगाई है, गैसे गाय भी नहीं जानते हैं मास्टर जी। तो जनसत्ता की सुर्खी है, गाय पर निबंध नहीं लिख पाए गुरुजी, अब होगा मुकदमा। मामला है श्रीनगर का, जहां जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने खुली अदालत में एक अध्यापक से गाय पर निबंध लिखने और 4th की कक्षा के गणित का एक सवाल हल करने को कहा, लेकिन अध्यापक से ये नहीं हो पाया।
चलिए बिहार यूपी से बात अब कश्मीर तक तो पहुंची।
और इसी से जुड़ी एक खबर दैनिक भास्कर में, 7 साल का बच्चा बोला पीएम बना तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दूंगा।
मैं देख रहा था वो वीडियो और नीतीश कुमार काफी गंभीरता से सुन रहे थे, कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं
जी। तो ये सब आज के अखबारों में खबरें हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपका। और अब बारी है न्यूज मेकर्स की, और न्यूज मेकर्स में मुलाकात जोधपुर राजस्थान की शंता देवी से, जिन्होंने शादी के बंधन से निकलना चाहा। वो शादी जो तब हुई जब वो महज 11 महीने की थी। शंता देवी अब 19 साल की हैं और बीए कर रही हैं। उनसे बात की सुमिरन प्रीत कौर ने।
शंता देवी, बीबीसी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शंता देवी, हम जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रही हैं, कुछ अपने बारे में बताइए।
मेरा नाम शंता देवी है, मेरा गांव है, तहसील लोनिया, जिला जोधपुर। मैं बीए सेकंड ईयर कर रही हूँ और आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं जय नारायण विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स है। मैं 16 साल की हुई तो मुझे पता चला कि मेरी बाल विवाह हो गया है, और मुझे समझ आया कि मेरा बाल विवाह मुझे नहीं रखना। तो मैं घर वालों से बात की, फिर घर वालों को कैसे भी करके उनको मनाया। फिर मैंने न्यूज और अखबारों में पढ़ा तो कीर्ति स्थिति के बारे में, तो मैं उन तक पहुंची और उनकी मदद से और बाल विवाह निरस्त कराना चाहती हूँ।
संता देवी, क्या कारण था कि आपके माता पिता ने आपकी शादी बचपन में ही करवा दी?
कि हम मजबूर थे, हमारी कोई चलती नहीं थी, वो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो करते थे, हम उनके पीछे रहते थे, हम कुछ बोल नहीं पाते थे उनके आगे।
संता देवी, जब आपके परिवार वालों ने लड़के वालों से ये बात करने की कोशिश की तब उन्होंने क्या कहा?
हाँ, उनसे बात तो की थी, वो मान नहीं रहे थे कि भेजना पड़ेगा, नहीं भेजोगे तो आप पर दबाव आएगा। तो अभी तो 2 महीने हो गए समाज से अलग कर दिया, फिर फिर बाद में वो इकट्ठा होकर लोगों ने कह दिया कि 16 लाख देंगे तो आप छूटोगे, नहीं तो नहीं छूटोगे।
इनकी मदद के लिए जहां कुछ लोग बिल्कुल नहीं सामने आए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामने आए। राजस्थान के एनजीओ सारथी ट्रस्ट के कुछ लोग इनकी मदद करने सामने आए। सारथी ट्रस्ट की कीर्ति भारती बताती हैं कि जब उन्होंने लड़के वालों से बात करने की कोशिश की तब क्या हुआ।
जो लड़का है सावल राम, मैं उससे मिली थी, उसने मुझे दो बातें कही है। पहली चीज तो ये कि आप ये केस छोड़ दीजिए, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा होगा। एक तरह से थ्रेटनिंग देने की उसने कोशिश की थी। एंड सेकेंडली उसने ये कहा था कि जो संता है उसे आप गांव भेज दीजिए, डिसीजन हमारे समाज की जाति पंचायत के द्वारा होगा और वही डिसाइड करेंगे, हम लोग कोर्ट में नहीं आएंगे।
संता देवी, जब आप 16 साल की हुई तब आपको पता लगा कि आपकी बचपन में शादी हो चुकी है। ठीक है, शादी हो चुकी है, तो आपने कभी उन्हें जानने की कोशिश की, कभी उनसे बात की इस दौरान इतने सालों में? और ऐसा क्या कारण था कि आपको लगा कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है?
बड़ा है, 8 साल बड़ा है। मैं गांव, पास वाले गांव में तुंदड़ा गांव में वहां जाती थी, तो वो आता था, दारू पी के वो खड़ा रहता, बस में जाती थी वो पास पास घूमता था, ऐसे हरकतें करता था। इतने सालों से हमारी कोई बात नहीं हुई।
और क्या आपकी बहन का भी बाल विवाह हुआ था?
हाँ, मेरे साथ ही हुआ था, मेरी दीदी का और मेरा साथ ही हुआ था।
और अब लेटेस्ट क्या है इस मामले में?
अभी तो हम कोर्ट गए थे, चार्टी ट्रस्ट की दीदी और हम अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है और उन्हीं की मदद से बाल विवाह निरस्त कराने में मेरी मदद कर रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी बाल विवाह निरस्त हो जाए।
और अब समय है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। IPL 8 में कल दो मैच खेले गए और दोनों विजेता टीमों ने प्लेऑफ में अपनी जगह भी बना ली। पहले मुकाबले में चेन्नई ने किंग्स 11 पंजाब को और दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। चेन्नई ने 18 और राजस्थान ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बनाई। अब कोई चमत्कार ही कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। वैसे अंतिम चार टीमों का फैसला आज होने वाले मुकाबलों के बाद होगा, जिसमें बेंगलोर का सामना दिल्ली से और हैदराबाद का सामना मुंबई से होगा। इससे पहले कल खेले गए पहले मुकाबले में चेन्नई ने अपने आप को सुपर किंग्स साबित करते हुए किंग्स 11 पंजाब को उसी के मैदान मोहाली में 19 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम चेन्नई की सधी गेंदबाजी के सामने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर केवल 130 रन बना सकी। जवाब में जीत का लक्ष्य चेन्नई ने फेब डु प्लेसिस के 55 और सुरेश रैना के नाबाद 41 रन की मदद से केवल 3 विकेट खोकर 16.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। कल मुंबई में खेले गए दूसरे मुकाबले में शेन वाटसन की शतकीय पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर जीत का हल्ला बोला और उसे 9 रन से मात दी। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शेन वाटसन के नाबाद 104 और अजिंक्य रहाणे के 37 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 199 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 190 रन बना सकी। राजस्थान के लिए दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज क्रिस मॉरिस ने 23 रन देकर 4 विकेट लिए। उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस रोम मास्टर्स के महिला युगल वर्ग के फाइनल में पहुँच गयी है।
और कार्यक्रम के अंत में अब समय है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की चीन यात्रा के बाद कल मंगोलिया पहुंच गए। आज वो वहां राजधानी उलन बाटोर में मंगोलिया की संसद को संबोधित करेंगे। अमरीकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा है कि सीरिया में विशेष अमरीकी बलों की कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ नेता की मौत जिहादियों के लिए एक बड़ा धक्का है। अबू सैफ अमरीकी कमांडो कार्रवाई में मारे गए। बीबीसी को अफ्रीकी देश बुरुंडी में ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि राष्ट्रपति पियरे एन कुरुनजीजा के तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद पुलिस ने विरोधी पक्ष के लोगों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में कम से कम 4 चरमपंथी मारे गए हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आइस हॉकी के एक दोस्ताना मैच में 8 गोल दागे, हालांकि इसमें उन्हें 2 पूर्व राष्ट्रीय चैंपियनों की मदद भी मिली थी। साथ ही उत्तरी नाइजीरिया में बस स्टैंड पर एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे दोबारा उपस्थित होंगे। नमस्कार।